समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। रोज की तरह ही अगले आधे घंटे में हम उन सारी खबरों का लेखा जोखा आपको देंगे जिनका आपसे है सरोकार। डेटलाइन में हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, क्योंकि आज है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। राज्यों की परिक्रमा करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के माध्यम से। आर्थिक जगत और खेल के मैदान पर भी रहेगी हमारी नजर। और आखिरी सेगमेंट में हम याद करेंगे उन हस्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल।
Good afternoon, Mudita. Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very, very fresh episode of Parikrama. And yes, Mudita has already told you what all we have got lined up in today's show. And yes, our Dateline India segment has a very important topic today, Mudita. And especially in our society, I think, you know, menstruation is still a taboo topic. So it's very important that we discuss that. All of that in the next half an hour. But first, let's start with the headlines.
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि को मंजूरी दी।
Cabinet also gives nod for two multi-tracking projects across Indian Railways in Maharashtra and Madhya Pradesh.
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के अवर सचिव जेफरी केसलर से मुलाकात की।
Prime Minister pays tribute to freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar on his birth anniversary.
और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने चार देशों के टूर्नामेंट में मेजबान अर्जेंटीना को शूटआउट में 2-0 से हराया।
And yes, Hasbi Dastur, हम शुरुआत करते हैं डेटलाइन इंडिया से। And as we mentioned, Mudita, that today we are going to discuss a very important topic because today is World Menstrual Hygiene Day.
जी बिल्कुल श्रोताओं, तो आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है और जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस दिन का उद्देश्य मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही ये दिन मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और सुरक्षित और किफायती मासिक धर्म उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए भी है।
Indeed, World Menstrual Hygiene Day provides an opportunity to break the stigma that surrounds menstruation even today and promote the availability of safe and affordable menstrual products as well as access to proper sanitation facilities. In most instances, girls are advised by older women to be silent on this topic except to other older females who are close to them. This may be intended to probably shield the girls from being shamed by boys or men who are culturally unprepared to treat such talk with composure. In fact, hardly लड़की मेरे ख्याल से मुदिता अपनी टीनेज से या जब भी वो प्यूबर्टी अटेंड करती है तो उसके अंदर भी कितनी चीजें हो रही होती हैं। शी नीड सपोर्ट, ना कि उसको हर कोई जो है डिक्टेट कर रहा होता है ये मत करो, पूजा नहीं कर सकती हो, यहां नहीं आ सकती हो। तो सडनली एक बच्ची जो कल को खेल रही होती है इन हर फ्रॉक, सडनली शी रियलाइजेज माई गॉड, द वर्ल्ड हैज टर्नड अपसाइड डाउन फॉर मी।
जी बिल्कुल सायरा, और विडंबना देखिए कि सृजन का आधार जो मासिक धर्म है लेकिन उसी को सुनते ही लोग असहज हो जाते हैं। आज इसे टैबू समझा जाता है। हमने बहुत कोशिशें की हैं और पहले से काफी बदलाव आया है लेकिन आज भी इसको लेकर के एक जिस स्टिग्मा की आपने बात की वो अभी भी दिखाई देता है हमें अपने आसपास। तो ये दिन जो है ये खासतौर पे इसीलिए बनाया गया है कि जिससे हम मासिक धर्म पीरियड्स के बारे में चुप्पी को तोड़ने का दिन है और लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाएं हम इसको लेकर के। साथ ही मासिक धर्म से जुड़ी हुई साफ सफाई से संबंधित बातचीत हम लोगों से कर पाए, उनको उसके बारे में अवेयर करें, उनको बताया जाए उस बारे में।
दैट्स वेरी ट्रू मुदिता। इनफैक्ट यू नो वी हैव अ वेरी स्पेशल इंटरव्यू आल्सो लाइंड अप जो उसको अभी हम लोग अपने लिसनर्स को सुनाएं। आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज कहना चाहते हैं जो हमारे गेस्ट ने भी कही, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर कोई यू नो जैसी एक लड़की प्यूबर्टी अटेंड करती है, एवरी वन इन द सोसाइटी स्पेशली अदर वुमेन दे स्टार्ट प्रीचिंग हर एंड यू नो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट एंड मेक द मेन अवेयर ऑल्सो. टेल मी इफ देर इज अ ब्रदर एंड सिस्टर इन द हाउस, हाउ ऑफन डू वी सी के मदर जो है अपने बेटे को बैठ के बताएं कि नाउ योर सिस्टर यू नो टूडे इज शी मेंस्ट्रुएटिंग सो प्लीज बेयर हर मूड स्विंग्स. नहीं करते हैं, व्हाई? बिकॉज स्टिल इट्स कंसिडर्ड अ टैबू. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली एजुकेट द मैन ऑल्सो ऑन दिस.
बिल्कुल, बहुत जरूरी बात कही सायरा आपने. और हम आज भी देखते हैं ना कि एक लड़कियों की बड़ी संख्या है जो महावारी शुरू होने से पहले नहीं जानते उनको, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है. और वही जो आप बात कर रही थी कि अचानक से एक खेलती कूदती बच्ची जो है वो कई बार इसी चीज को देख के डर जाती है क्योंकि उनको उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है. और इसी तरह एक बड़ा प्रतिशत है उन लड़कियों का जो स्कूल नहीं जा पाती है महावारी के चलते.
आई थिंक अ लॉट ऑफ यू नो स्टिग्मा इज अटैच्ड बिकॉज देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन ऑल्सो. Because I remember one of my friend Mudita, she said that when she was growing up, it was not her mother who probably told her that now you're going to have your period soon. It was her father, because her mother was probably less educated. She belonged to a you know to the hinterland, जहाँ पे ज़्यादातर हम देखते हैं कि औरतें ज़्यादा नहीं पढ़ती लिखती, लेकिन उनकी शादी एक comparatively पढ़े लिखे आदमी से होती है. But I think a salute to her father back in the you know 90s, जिन्होंने अपनी बेटी को बताया और फिर अपनी बीवी को बताया that you should also take care because now she's going to be 12 or 13 so that you know she'll start menstruating soon. So I think that's quite commendable.
जी बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शिक्षा का बड़ा महत्व है इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो. और साथ ही साथ जो अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे एनजीओज की तरफ से हो, और खासकर मुझे लगता है स्कूल और कॉलेजों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और खासकर पीरियड्स के बारे में बताने के लिए, साथ ही उसके बारे में साफ सफाई के लिए ध्यान आप कैसे रखें, इन चीजों के बारे में भी इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है.
आपने स्कूल्स का जिक्र किया एंड studied in an all girls college, so I don't have that experience, but many of my friends who studied in co-ed schools, they used to say ke jab is tarah ki workshops hoti thi, you know, when such companies used to come with menstrual products, so the boys were asked to remain in the class, only the girls should come to the hall, and because there's a girl specific. Now I think that mindset really needs to change. You have to call the boys and girls together, let the boys also be aware that you know what is it about, and there's although वो एज ऐसी होती है कि हर चीज में आप थोड़ा सा यू नो हर चीज को फन बनाते हैं, बट उस वक्त भले ही इन द मोमेंट आप उसका मजाक समझें, लेकिन आई एम श्योर इफ यू एजुकेट अ बॉय तो वो व्हेन ही विल ग्रो अप लेटर ही विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट डे व्हेन ही हैड दैट वर्कशॉप एंड ही विल बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स हिज सिस्टर हिज वाइफ
अपने आसपास की सभी महिलाओं के लिए.
एब्सोल्युटली. सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्लेज अ पिवोटल रोल इन द लाइव्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स वर्ल्ड वाइड. Poor menstrual hygiene practices can lead to various health issues and overall well-being. In many countries, menstruation is still considered a taboo subject, and girls face tremendous challenges in maintaining their menstrual health. These challenges include poverty, lack of education, and prevalent patriarchy in the society.
जी श्रोताओं, तो जैसा कि सायरा ने आपको बताया ही, और अब हम आज के दिन की बात करें तो 28 मई की जो तारीख है सायरा, ये खास तौर पर चुनी गई है इसके लिए क्योंकि औसत जो मासिक धर्म का चक्र होता है उसकी गिनती जो होती है दिनों की वो 28 के आसपास रहती है, तो 28 तारीख इसलिए चुनी गई है. और आमतौर पर हर महीने रक्तस्राव के दिनों की संख्या 5 होती है, तो 5वां महीना है ये, इस तरह से ये 28 मई है. और इस साल का थीम है Together for a period friendly world. ये एक ऐसी दुनिया बनाने पर जोर देता है जहां मासिक धर्म को जीवन के एक सामान्य हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है, जहां आवश्यक संसाधनों और सेवाओं तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं हो, कोई स्टिग्मा नहीं हो.
Absolutely, because the stigma and discrimination associated with menstruation can lead to social exclusion and discrimination against women and girls. This can prevent them from accessing essential services and participating in community activities, further entrenching gender disparities. The day's objective is to establish a society in which no woman or girl faces hardships because she menstruates. And agar apne aap mein dekha jaye ki isko kyun stigma mante hain, because in fact बहुत से कल्चर्स में इसको सेलिब्रेट भी करते हैं
जी, भारत
चाइना में
ही,
इंडोनेशिया में देयर इज अ सेरेमनी
जी बिल्कुल yes. बिल्कुल भारत में भी दक्षिण भारत की कई कम्युनिटीज में आपको ये मिलेगा। इसके अलावा कामाख्या देवी का मंदिर है,
Imagine,
हमारी
yes.
संस्कृति का हिस्सा है
exactly.
वो मंदिर, और वहाँ हर साल जून में एक अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है जो देवी के मासिक धर्म को दर्शाता है
right.
और उसमें कुछ दिनों तक मंदिर के कपाट भी बंद रखे जाते हैं, जब वो खत्म होता है उसके बाद वो खोले जाते हैं, फिर वहाँ मेला लगता है। तो ये तो हमारे तो कल्चर का पार्ट
एग्जैक्टली, सो दैट मीन्स वी कैन से कि इन ओल्डन टाइम्स पीपल वर मोर प्रोग्रेसिव बिकॉज वो उन्होंने नॉर्मलाइज किया था इमेजिन यू नो पीरियड्स को, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑन द शो जिनसे हमने टेलीफोन पे इंटरव्यू लिया था, मिस फरहीन नाज। शी इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ We the Change, an organization dedicated to creating awareness about menstrual health and hygiene.
I was on ground during COVID and we were doing these ration kits distribution one day, and a lady approached me asking for an extra sanitary pad packet. We used to pack one sanitary packet in each kit, but she asked me for an extra one and I said there is no extra pad available right now. And she said, Didi, ration to sab baat rahe hain, pad koi nahi baatta. Yahan khane ke paise nahi hai to pad kahan se laye. It somehow hit all the trauma that I endured since my teenage till that day, and I realized how ignorant I am for not thinking of having plenty of supply of sanitary pad in that ration kit, being a menstruator myself. And that evening, I came back home, sat with my younger brother, who also a co-founder at We The Change, and we both started We The Change that evening. Later, we decided to extend and expand our reach to other parts of the country. And today, with 70,000 lives touched across India and parts of Africa, we are educating people in every nook and corner of the country. When you go to rural areas, there is a lot of stigma attached. Of course it is. But urban spaces are no different. People are equally hesitant. Maybe the accessibility of information through social media is a little more. People resist to open up. And same is the case with rural communities. मगर एक चीज जो हमने पाई अपने काम के दौरान वो ये थी कि दी रूरल एंड ट्राइबल गर्ल्स आर मोर ओपन टू एक्सेप्ट चेंज इन देयर लाइव्स एज कम्पेयर टू दी अर्बन पॉपुलेशंस। इफ आई टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल कप्स इन अर्बन स्पेसेस, पीपल आर रियली हेजिटेंट, बट माय एक्सपीरियंस वर्किंग विद ट्राइबल कम्युनिटीज इन मणिपुर एंड कश्मीर, they receive menstrual cups with open hearts. There were 120 tribal women who instantly accepted it wholeheartedly and are using it. My message to all the girls and women out there is that normalize periods and educate men in your lives. Trust me, men are the greatest support to you. If you educate them and make them understand what you go through previous and educate them on how can they make you comfortable during those days, you will have the best buddies around. So we need to destigmatize and normalize AIDS. And we also run a campaign to, you know, extend this awareness among masses by the name, especially focusing boys and men. Tere ghar mein maa bhen nahi hai kya? So that they could also understand that it's as normal as breathing, and they should also know and educate themselves about it.
Thank you so much, Fareen, for joining us. Here's to more women power.
Thank you. Happy Menstrual Hygiene Day.
A very, very brief but very important interview of Fareen Naz, founder and CEO of We The Change. And we wind up this segment on, you know, our Dateline segment on this very important topic with Maya Angelou's words. Quote, "Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women."
और सायरा, आज माया एंजेलो की पुण्यतिथि भी है।
Yes, so of course, now very apt day to conclude it with her lines.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास। तो सायरा, सबसे पहले हम किस राज्य में चलेंगे?
वेल, परिक्रमा नाम है शो का, तो परिक्रमा शुरुआत करते हैं हम लोग गैंगटॉक से, वेयर अ सिक्स डे स्पेशल साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन प्रोग्राम फॉर मिडिल एंड सेकेंडरी लेवल्स वॉज इनॉग्रेटेड टूडे एट द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन लुआ बुरतोक। वी हैव अ रिपोर्ट।
The initiative is being conducted by the SERT Education Department, Government of Sikkim, in collaboration with the Indian Institute of Science, Education and Research, IISER, Pune. Minister for Education, Sports and Youth Affairs and Law and Parliamentary Affairs, Mr. Raju Basnet, graced the inaugural session as chief guest. Addressing the gathering, he applauded the improved result in class 10 and 12 board examination and urged teachers to engage students consistently throughout the year. He highlighted the Chief Minister's mentorship program and stressed the need for inclusive education and early life skill development. Earlier, an MOU was signed between SERT and IISER Pune to formalize the partnership. The workshop is being attended by 105 science and mathematics teachers from 34 blocks across the state. Secretary School Education Mr. Transit Chopel Lepcha called for strengthening foundation learning in class 9 and 11 and encouraged serious engagement with the training. Dr. Asim Auti of IISER Pune presented the program objectives including monitoring, classroom observation and statewide implementation. The event also featured the distribution of STEM kits and token of appreciation. Senior officials from the Education Department and SERT were present including Director Dr. Robin Chetri and Tiliram Dulal, Akashwani News Gantok for Parikrama.
Aur shrutaon, haal hi mein Man Ki Baat ke 122nd sanskaran mein Pradhan Mantri Narendra Modi ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के जीवन चंद्र जोशी के कामों का जिक्र किया. उनका हुनर न केवल पारिस्थितिकीय टिकाऊ दृष्टिकोण का उदाहरण है बल्कि उनकी कहानी अपने आप में साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता साक्षी सिंह की ये रिपोर्ट.
From the mighty mountains and the serene forests of Uttarakhand, the story of Jeevan Chandra Joshi of Haldwani is one of grit and determination. Polio didn't hinder him from achieving his dreams. He turned his adversity into art, crafting stunning sculptures from the discarded pine bark, known as Baigut locally. All his creations reflect the traditions, culture, instrument, temples, folk art, what all can be said as the soul of Uttarakhand, all carved with care and love for one's culture and for one's environment. In recognition of his unique contributions, he became the first Indian artist to receive a fellowship from the Ministry of Culture for his work with pine bark. This artistic approach to ecological sustainability and story of resilience, innovation and cultural pride, the story of Jeevan Joshi, was recognized by Prime Minister during his 122nd edition of Man Ki Baat. His story clearly reminds us all that limitation cannot stop our dreams and determination. For Parikrama, Sakshi Singh from Uttarakhand.
And now from up north, we go down south to Mumbai, to Peninsula India. In fact, the Konkan region of Maharashtra recently witnessed a crucial moment for avian conservation when the critically endangered lesser florican was sighted for the first time in Ratnagiri district. Bird watcher Prasad Gokhale spotted a female of the species, distinguished by its mottled brown plumage on a rocky plateau in the region, and also captured her in a photograph. What a beautiful and very, I think, memorable moment for the bird watcher. Let's hear more from our correspondent.
According to the International Union for Conservation of Nature, the lesser florican is classified as critically endangered with an estimated global population of fewer than 1,000 individuals. This sighting of lesser florican in Ratnagiri is particularly significant as there have been no recorded observations of this species in Ratnagiri before. Telling us more is our Ratnagiri correspondent Aniket Konkar.
The lesser florican is known to breed in the grasslands of Rajasthan and Gujarat during the monsoon season. Post-breeding, it migrates to parts of Andhra Pradesh and Karnataka. Its last documented sighting in the entire Konkan region dates back to 1938. Hence, its sighting in the Ratnagiri is much more interesting and intriguing for ornithologists and bird watchers alike. The experts suggest that the bird spotted in the Ratnagiri might have deviated from its usual migratory path due to adverse weather conditions or exhaustion. Interestingly, the area where the bird was observed has previously been a site for sightings of other rare avian species, underscoring the ecological importance of these rocky plateaus.
Bird watcher Prasad Gokhale has emphasized the need for conservation efforts focused on these habitats. He has urged bird watchers and researchers to monitor such areas closely, as systematic observations could provide valuable insights into migratory patterns and contribute to the broader understanding of the species ecology. For Parikrama, with Aniket Konkar from Ratnagiri, this is Ankita Apte from Mumbai.
और खेल के मैदान की हलचल में हॉकी में अर्जेंटीना के रोसारियो में चार देशों के टूर्नामेंट के तीसरे मैच में भारतीय जूनियर महिला टीम ने निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ के बाद शूटआउट में मेजबान अर्जेंटीना को 2-0 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने पहले क्वार्टर में मिलग्रोस डेल वेले के गोल से मजबूत शुरुआत की और घरेलू टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। कनिका ने 44वें मिनट में बराबरी का गोल किया। शुक्रवार को अगले मैच में भारत का मुकाबला चिली से होगा।
And if we talk about IPL cricket, well, Royal Challengers Bengaluru RCB beat host Lucknow Super Giants by 6 wickets last night. With this win, RCB secured a top 2 finish in the points table, hence advancing to the qualifier 1, where they will face Punjab Kings tomorrow. And there is some business news as well. Well, the benchmark domestic equity indices ended in negative territory for the second straight session in a range-bound trade today. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, dropped 239 points or 0.29% to close at 81,312. The National Stock Exchange, Nifty 50, declined 74 points to settle at 24,752. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 96,200 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was also trading up at 98,360 rupees per kg.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्म दिवस। और इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला मारिलरि पुजगति असा कवण जन्मला।
28th May is the birth anniversary of nationalist Vinayak Damodar Savarkar. He was born in the year 1883 in Nashik. Credited with writing the book The Indian War of Independence 1857, young Savarkar provided leadership to several other young freedom fighters in London and across Europe to garner support for India's freedom.
Savarkar was associated with the nationalist activities of India House in London, along with Madame Bhikaji Kama, Shyamji Krishna Verma and Madanlal Dhingra. When the Indian Imperial Police tried to arrest Savarkar, he moved to Bhikaji Kama's home in Paris. However, he was finally brought to Bombay and tried for abetting the murder of Nashik collector Jackson. He was also implicated for waging a conspiracy against the King Emperor. Savarkar was convicted and sentenced to 50 years imprisonment and on the 4th of July 1911 transported to the cellular jail in the Andamans. While in jail, Savarkar signed a statement renouncing violence. He was moved to Ratnagiri in 1921 and was unconditionally released by the newly elected government of Bombay Presidency in 1937.
Savarkar was against the caste system and said that the rigid caste system deserves to be thrown into the dustbins of history. He asked for breaking away from caste-based vocational rigidity and encouraged persons to pursue any vocation of their choice based on aptitude and ability. He believed in global mobility and the need for Indians to venture out into foreign lands so as to bring back the best of the world and carry the fragrance of India and her culture to every corner.
He also promoted inter-caste marriage and underscored the need to develop a scientific temper. Savarkar breathed his last on the 26th of February 1966.
Bhagwati Charan, who was martyred on the 28th of May 1930.
Bhagwati was born in 1903 in Lahore and took part in the non-cooperation movement as a school and college student. While studying in the National College Lahore, he became interested in revolutionary politics after being influenced by the writings of Sachindranath Sanyal. Along with Bhagat Singh and Sukhdev, Bhagwati Charan founded Naujawan Bharat Sabha in 1926. The British authorities in 1928 issued a warrant for Bhagwati's arrest in the Meerut conspiracy case and also a search of his home, forcing him to go underground.
A prime mover for rescuing Bhagat Singh and his comrades from jail, Bhagwati was party to the drawing up of an elaborate rescue plan. In an urgency to put the plan into effect, he and his associates tried to experiment with a newly developed bomb in the dense forest on the bank of the Ravi. At the time of testing it on 28th of May 1930, the bomb exploded in Bhagwati Charan's hands, mortally injuring and killing him.
Haske ruksat karo humko, ae saathiyo, puri karne hum apni qasam chal di.
Bhagwati's revolutionary legacy was carried forward by his wife Durga Devi, who continued to work towards the freedom movement.
और श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब निर्देशकों में शुमार किए जाने वाले महबूब खान की पुण्यतिथि है। यूं तो कई फिल्में जायरा उन्होंने बनाई हैं, लेकिन उनका परिचय देने के लिए सिर्फ एक फिल्म का नाम काफी है, मुझे लगता है मदर इंडिया, जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े थे बल्कि ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर्स में भेजा गया था और वहां भी इस फिल्म को खूब तारीफें मिली, लेकिन महज एक वोट से फिल्म ऑस्कर जीतने से चूक गई थी। और ये मदर इंडिया दरअसल महबूब खान की अपनी ही फिल्म औरत का रीमेक थी जो उन्होंने 1940 में बनाई थी। 9 सितंबर 1907 को गुजरात के बिलिमोरा में जन्मे महबूब खान का असल नाम रमजान खान था। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने मुंबई में घोड़ों की नाल ठोकने का काम भी किया है। शुरुआत में एक्टर बनना चाहते थे, कई फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन उसके बाद वो निर्देशन की दुनिया में आए और उनकी बनाई कुछ अन्य महत्वपूर्ण फिल्में हैं आन, अंदाज, अनोखी अदा, सन ऑफ इंडिया। 1954 में उन्होंने महबूब स्टूडियो की स्थापना की जो पिछले 70 सालों से भारत के सबसे लोकप्रिय स्टूडियोज में शामिल है। 1964 में आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो क्यों ना उनकी फिल्म मदर इंडिया का ये मशहूर गीत सुन लें।
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे।
Today we are also remembering N.T. Rama Rao on his death on his birth anniversary, often referred to by his initials N.T.R. He was a phenomenal actor and regarded as one of the most influential actors of Indian cinema, who starred in over 300 films, predominantly in Telugu cinema, and was referred to as Vishvikhyatanata Sarvabhauma, which is universally, you know, translated as a universally renowned star of acting. One of the earliest method actors of Indian cinema, he was voted as the greatest Indian actor of all time in a CNN IBN national poll conducted on the occasion of centenary of Indian cinema.
और आज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित डीवी पलुस्कर की जयंती है। दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर भजन और शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक जादू से कम नहीं थे। अद्भुत, अलौकिक, न भूतो न भविष्यति, ये उन्हें सुनने वालों के भाव होते हैं जायरा। 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक में उनका जन्म हुआ था। विख्यात हिंदुस्तानी संगीतकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर उनके पिता थे। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले शास्त्रीय गायन से अपनी पहचान बना ली थी। 1938 से ऑल इंडिया रेडियो के विभिन्न स्टेशनों से भी वे जुड़े रहे और 26 अक्टूबर 1955 में महज 34 साल की उम्र में वे दुनिया छोड़ गए थे। लेकिन इतनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने सुरों का जो जादू बिखेरा वो आज तक कायम है। ख्याल गायकी की उनकी एक बड़ी सरल और स्पष्ट शैली थी और सायरा बड़े उन दुर्लभ कलाकारों में थे जिन्होंने शास्त्रीयता को लोकप्रिय अपील के साथ जोड़ा था, और इसीलिए उनके भजन जो है वो शास्त्रीयता को निभाते हुए भी अपने स्वरूप में बड़े सरल सुनाई देते हैं।
तो क्यों ना सुने उनका ये भजन।
राम के कारण तुम्हें
जैसे आनंद फिल्म का डायलॉग था ना मुदिता कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होना चाहिए, आई थिंक इट एप्टली बिफिट्स पंडित पलुस्कर बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड अ चाइल्ड प्रोडजी. और मेरे ख्याल से शायद उन्होंने इतनी जल्दी ही नाम ज्यादा कमा लिया क्योंकि शायद इन द नंबर ऑफ ईयर्स उनको कम दिनों के लिए रहना था इस दुनिया में.
जी बिल्कुल. और चलते चलते क्यों ना सायरा बैजू बावरा की जो एक अनूठी जुगलबंदी आमिर खान साहब और पंडित डी वी पलुस्कर साहब की, मुझे बताते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि ये दो कलाकार जब सामने बैठे होंगे गाने के लिए क्यों ना उसको सुन लिया जाए. और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार, नमस्कार।